गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बाच पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआ में भूल गए सृजनहारा। अब इस एक सेंटेंस को परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान के एक सेंटेंस, एक अमृतवाणी के एक दोहे को सोल करने के लिए अब कितना बड़ा आपके समक्ष प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। कौन से सेंटेंस को, कौन सी अमृतवाणी को कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, अंधे हैं ये सारे, जो ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी यहाँ के जो विद्वान कहलावे थे, भगवान कहलावे थे, और दिक्कत के तय नैन चश्मीन का फेरा मोतिया बंदरे। पुण्यात्माओं, आप किसी भी धर्म और किसी भी विद्वान महापुरुष की थ्योरी को उनके लिखे हुए आज के आपके पास उपलब्ध हैं। आज एक हमारे सामने एक सबसे बड़ी सुविधा यह होगी कि जितने भी ऋषि महर्षि और जितने भी संत प्रवर्तक जितने भी हैं, इन सब ने अपनी सोच की मोटी मोटी किताब बुक बनाकर पुस्तक और समाज में पेश कर रखी कि हम के जाने थे, हमें कितना ज्ञान है। अब वो ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा नहीं कहते थे। परमात्मा ने ऐसे समय में ये तत्व ज्ञान का ढोल पीटना था, इसको ऐसे समय में उजागर करना था कि जब सभी की सभी जो है ना कलमबद्ध कर चुके हैं अपने विचारों को। अब वो नो नहीं कह सकते हम ऐसा नहीं बताते थे, क्योंकि उनके सब लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वो सब जानते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या ज्ञान देते थे। सभी क्या बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, वो केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, देखा जा सकता है समाधि में या ध्यान से या भक्ति से। परमात्मा सूर्य की तरह, सूर्य के तुल्य प्रकाशमान है। अब किसी का भी विधान देख लो आप, किसी का। और जबकि हमारे वेद बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, वो मनुष्य जैसा है, वो साकार है। और कहां है अपने वेद बताते हैं, और आंखों देखा वो संत बताते हैं जिनको परमात्मा साक्षात आकर मिला, उनको अपने सचखंड सतलोक में उस ऊपर के आकाश में यानी अंतरिक्ष के अंदर उस स्थान पर लेकर गया जहां परमात्मा रहते हैं, जहां उनका मानव सदृश शरीर है। उसके बाद फिर आंखों देखा उन महापुरुषों ने अपनी वाणी में ठोक करके गवाही दी है, साक्षी दी है। अब आपको दिखाते हैं अब किसी भी महापुरुष की थ्योरी देख लो, चाहे तो इसरादा स्वामी पंथ की, चाहे धन धन सदगुरु पंथ की, और चाहे ये जो अंशादेश वाले हैं इनकी, या किसी और महापुरुष की है, किसी की देख लो, सब ये कहते हैं भगवान निराकार है। चाहे कोई शिव का पुजारी है, चाहे कोई विष्णु जी का पुजारी है, उनकी मूर्ति भी बना रहे हैं और फिर भी समाधि लगाकर मेडिटेशन बताते हैं। फिर कोई कहे कि जी भगवान की का क्या स्वरूप है, कहते वो तो प्रकाश ही प्रकाश है, वो तो भगवान का प्रकाश देखा जा सकता है, भगवान तो निराकार। और फिर यह शिव जी की मूर्ति किस लिए बना रखी है, विष्णु जी की मूर्ति, श्री कृष्ण राम की मूर्ति भगवान मानकर पूज रहे, तुम यह क्या है? यह तो अब समझ मान लगी, जब हमारे ये मोतियाबिंद हट गया हमारे आंखों के सामने, जो मोतियाबिंद था परमात्मा ने ज्ञान का, यो ज्ञान से यो साफ कर दिया, ऑपरेशन कर दिया इस तत्व ज्ञान से। अब आपको दिखाते हैं कितना अज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर। अब जैसे वर्तमान में यहां एक सबसे ज्यादा अंडी पाक रहा था महर्षि दयानंद, और इनका बोलबाला सब जगह पूरे हिंदुस्तान में हो चुका था, हो चुका है कि महर्षि दयानंद जैसा विद्वान और वेदों का ज्ञाता नहीं है। और महर्षि दयानंद जी ने शंकराचार्य जैसे उनको भी फेल कर रखा अपनी इस थ्योरी में कि वो तो कुछ नहीं जानते थे, वो परमात्मा का साकार रूप बताते थे, वो श्री कृष्ण शंकर ने भगवान माने थे शंकराचार्य, तो ये कहता वो निराकार है परमात्मा। देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश, ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये कहां से प्रकाशित है, ये लिखा अत सत्यार्थ प्रकाश है, इसमें क्या लिखा है, ये वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण, वेद आदि सत शास्त्रों के प्रमाणों से, उनके आधार से इसकी रचना की है, इस सत्यार प्रकाश की स्वामी जी करें। और किसने की है, श्रीमत परमहंस परिवराज काचार्य, परिवराजक आचार्य, कौन है वो श्रीमद परमहंस परिवराज आचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। वेद आदि विविध भिन्न भिन्न प्रकार के वेद जैसे आदि सद शास्त्रों के आधार पर इसकी रचना की है, जो इसमें लिखा है वेदों का ही सारांश है, इसका ये अर्थ है। ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीना नगर पंजाब, ये कहां से छपा है, ये है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहां से छपा है। इसमें आपको दिखाते हैं सातवें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर, ये देखिएगा सप्तम समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश है 154 पृष्ठ पे। यहां क्या बता रहे हैं, स्वामी जी से किसी ने पूछा प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर स्वामी जी का कि निराकार है। अब देखो 154 पे आप पे साकार सिद्ध कर रहे हैं, किसी ने पूछा प्रश्न, परमेश्वर की सतुति, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं, उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, उत्तर स्वामी जी कहते नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें, उत्तर स्वामी जी का उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न कर्ता कहता फिर क्या फल है, स्वामी जी दयानंद जी ने उत्तर दिया स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता उत्साह उत्साह और सहायता का मिलना उपासना से, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। और ले भाई कर दिया काम, उपासना से परब्रह्म से मेल यानी ब्रह्म से भी नेक्स्ट और कोई भगवान उससे मेल हो जा बिना पाप कटे पापी आत्मा का, और उसका परमात्मा का साक्षात्कार माने उसके साकार दर्शन कर लेता है। तो साक्षात्कार तो पुण्यात्मा साकार से होता, निराकार का नहीं हो सकता। अब देखो, अब स्वामी जी के इस सत्यार प्रकाश में के सिद्धांत है, एक तो यह है कि परमात्मा वो निराकार बताते हैं, दूसरा कहते हैं वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अधिक ब्रह्म हो और अधिक भगवान नहीं है, एक ही भगवान ब्रह्म है दूसरा। तीसरा उनका है कि पाप अक्षमा भगवान पाप नाश नहीं करता, अभी इन्होंने लिखा कि पाप नहीं छुड़वा सकता, पाप नाश नहीं करता, वो तो जैसे कर्म किए भोगने ही पड़ेंगे। और उनका चौथा सिद्धांत है कि ऊपर जैसे किसी ने प्रश्न किया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी कहीं एक ठिकाने बैठ कर ऊपर स्वर्ग लोक में ब्रह्म लोक में अपने मोक्ष सुख को भोगता है या वो घूमता रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि कोई ऊपर ऐसा स्थान नहीं है, कोई स्वर्ग आदि नहीं है, कोई ब्रह्म लोक नहीं है जहां पर मोक्ष प्राप्त प्राणी अपने सुख किए हुए कर्म का वहां भोग भोगता हो, शुभ कर्मों का, वो तो घूमता रहता है। अपुण्यात्माओं यही प्रमाण आपको वेदों में दिखा जाएगा, वेदों में खुद अनुवाद भी कर रहे हैं ये स्वामी जी कि वो परमात्मा ब्रह्म लोक में, वो प्राणी ब्रह्म लोक में चला जाता है जहां पहले भक्ति करके चले गए, वो स्वर्ग लोक में चला जाता है, स्वर्ग लोक में तुम भी जाओ, ये तो वेद प्रमाण कर रहे हैं। अब आपको वो प्रमाण दिखाएंगे, वेदों में प्रमाण दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है, वो पाप नाश कर देता है। अब सबसे पहले ब्रह्म के परमात्मा अधिक नहीं है, भगवान ब्रह्म एक है, अनेक नहीं है, ये सिद्धांत स्वामी जी ने स्वयं ही कंडम कर रखा है, स्वयं ही समाप्त कर रखा है। ये देखना सातवें समुल्लास के प्रारंभ में, सप्तम समुल्लास, सातवां समुल्लास बिल्कुल स्टार्ट में प्रश्न किसी ने कहा कि वेद में ईश्वर अनेक है, इस बात को आप मानते हो या नहीं। स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब यहां इन्हीं के शब्दों में आइए प्रथम ही समुल्लास में और प्रश्न नंबर 15 पर स्वामी जी क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अपुणात्मा ईश्वर कहो और चाहे ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, एक ही बात है। अब हम यहां आते हैं वापस फिर सप्तम समुल्लास में। अब स्वामी जी कहते हैं कि नहीं मानते क्योंकि वेदों में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं दयानंद जी के नहीं मानते क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि अनेक ईश्वर, अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों। ईश्वर को चाहे ब्रह्म उन्हीं के शब्दों में, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर अर्थात ब्रह्म एक है। और स्वामी जी यहां 151 पर तो ये बोल रहे हैं, 155 पर आप ही कह रहे हैं कि स्तुति प्रार्थना उपासना करने से, उपासना से परब्रह्म से मिले ओए है और उसका साक्षात्कार होना, ये तो दो कर दिए सिद्ध। परब्रह्म, ब्रह्म माने ईश्वर हो गया ना ईश्वर, परब्रह्म कोई और भगवान और ईश्वर, पर यानी एक दादा एक परदादा, यानी उस और उस दूसरे ब्रह्म ते मेल हो जाता, दो तो आप प्रसिद्ध कर दिए। और देखो वेदों में दिखलाते हैं, ये कहते हैं वेदों में कितन लिखा अनेक। अब यजुर्वेद के 40वें अध्याय का, यानी यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है 70वां 40वें अध्याय का, और 40 ही अध्याय है इस यजुर्वेद में, ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही अनुवाद किया गया है, इसका ये अनुवादक है। प्रकाशक कौन है? ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली में। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय किसने किए हैं? महर्षि दान सरस्वती जी ने, महर्षि दान सरस्वती कृत इन्होंने इसका अनुवाद किया है। छपे कहां से है? कहां से है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके अंतिम अध्याय के अंतिम ही मंत्र पर हम आते हैं जो स्वामी जी ने अनुवाद किया है। अब देखो ये 44 अध्याय और नीचे ये 17वां श्लोक मंत्र है। इसमें क्या कहा है? हिरमेन पात्रेण सतस्य अभितम मुखम। यहां क्या लिखा कि हे मनुष्यो, इसमें ये ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम। यहां इसने देखो ये है ना, इसका अर्थ है असौ और अहम। यहां अहम शब्द है, ये अहम, इसको अलग अलग कर दिया। और यहां क्या लिखा है, इन्हीं का अनुवाद पढ़ते इसी से क्लियर हो जाएगा। हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक, ये देखो वेदों का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये खुद कहते हैं कि वेदों का ज्ञान ब्रह्म ने दिया और वो किसी अन्य परमेश्वर के विषय में ब्रह्म बोल रहा है। हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, ये कहता मैं बता रहा हूं तेरे को कि जो वह प्राण वायु सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष, वो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम प्रकाश के तुल व्यापक ब्रह्म, इसका अर्थ है कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, यहां लिखा है अहम खम ब्रह्म, इसका अर्थ है मैं ब्रह्म। अहम माने मैं, ब्रह्म आकाश में यानी स्वर्ग में, आकाश माने ऊपर अंतरिक्ष में। ये क्या करे हैं, गुण कर्म स्वभाव करके अधिक हूं ओम सबका रक्षक, जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। अब देखो कितना विचलित है ये महात्मा, ये भगत जी इतने मोटे दिमाग का था। यहां लिख रहा है कि वह परमात्मा, वह जो पूर्ण परमात्मा वायु व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, अब ब्रह्म कह रहा है कि अहम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म तो आकाश में अंतरिक्ष में ऊपर व्यापक हूं और मेरा ओम नाम है, ओम नाम। फिर देख लो, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मैं तुम्हें अब खास बात बताता हूं। वेद ज्ञान दाता कहता कि जो वह प्राण वायु सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वो तो प्रोक्ष है, प्रोक्ष माने रूप है, गुप्त है, आच्छादित है, छुपा हुआ है, वो तो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, तो तीसरे नंबर का। और अपने विषय में करा कि अहम ब्रह्म खम, अहम खरम, मैं ब्रह्म, ओम ओम ऐसा नाम जानो, मैं ब्रह्म हूं और मेरा मैं उसका संरक्षक, जो मैं उसका ऐसा ओम नाम जानो, मैं जो रक्षक हूं उसका यानी मेरा ये ओम नाम जानो। अब दो हो गए, एक तो पूर्ण परमात्मा ऊपर छुपा हुआ गुप्त है, प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा खम ओम नाम है, और मैं खम माने आकाश में अंतरिक्ष में विद्यमान हूं, ब्रह्म लोक में रहता ही काल। अब दो भगवान हो गए, ब्रह्म और परब्रह्म। अब निराकार और साकार वाली थ्योरी और रहेगी इनकी। एक ये जो है इस यजुर्वेद में स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है, पुण्यात्माओं जैसे कोई औषधि है और कोई कहे कि औषधि से क्या पाप कट जाते, रोग कट जाता है, दवाई से मेडिसिन से रोग समाप्त हो जाता है और कोई वैद्य की फीत वैद्य कहलाता है, उस वैद्य से कोई पूछता है क्या औषधि से रोग कट जाता है, और वो उत्तर देवा है कि औषधि से रोग नहीं कट सकता, रोग नाश नहीं हो सकता। तो फिर प्रश्न करता क्या भाई फिर औषधि खाने का फायदा क्या, तू क्या औषधि खा ले, औषधि खा ले। वैद्य कह रहा है कि औषधि ले ले, फिर औषधि से कह रहा है रोग नहीं कटता है तो किस लिए खावे, तो वैद्य वो उत्तर दे नकली वैद्य के रोग तो नाश हो है को नहीं, पहलवान हो जाएगा, अरे तेरा गजब हो, कैंसर हो रही हो, अक्षय रोग हो, और उसने वो कहते हैं वो रोग कटे बिना पहलवान क्यों करोगा, उसकी तो मौत हो जाएगी। अब साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल नाश कर देता है, और कोई नहीं पूछे भाई, वो कहे कि मैं साबुन से पूर्ण तरह परिचित हूं, उसे कोई पूछे कि क्या साबुन कपड़े के मैल नाश कर देता है, और वो शॉप कीपर कवे वो लकड़ी के टुकड़े साबुन रूप में बेचनिया नकली, वो न्यू कह के साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता, तो और क्या करता है कि कपड़े को मजबूत कर देता है। क्या उस व्यक्ति ने जीवन में कभी साबुन प्रयोग किया है, क्या वो साबुन से परिचित है, बिल्कुल नहीं। तो पुण्यात्माओं ये स्थिति इस महर्षि कहलाने वाले दयानंद जी की थी, इसने क्या ही का बेरा नहीं था, केवल एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण संस्कृत भाषा जानता था, जो बचपन में इनकी परंपरागत धंधा था, इसी के आधार पर अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे उस समय के ये गुरु लोग, और संस्कृत केवल एक वर्ग ही पढ़ा करता था, दूसरा नहीं पढ़ा करता, ना उसने पढ़ाया करते ये। तो उस संस्कृत के बोलने कारण कहियो मैं ऋषि पाक गया, इसने तो क्या है का भी नहीं बेरा था सत्कर्म मानना, मैं इसका कोई शत्रु नहीं, ना मेरा कोई जाति दुश्मन हो, लेकिन मैं एक टीचर हूं, मेरे को परमात्मा ने आध्यात्मिक टीचर बना दिया, और ये भी आध्यात्मिक टीचर को आवे थे। अब जैसे किसी टीचर ने और कोई भी प्रश्न गलत हल कर रखा है, और उसमें प्रश्न गलत हल करके मोटी मोटी पुस्तक बना रखी है, और उनको स्टूडेंट विद्यार्थी लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको घोट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वो नया टीचर जो आता है उसको देखता है कि इसने तो भाई पहले वाले टीचर ने अध्यापक ने ये गलत हल कर रखा, उसको ठीक करता है और दिखाता है बच्चों को कि देखो इस टीचर ने ये गलत हल कर रखा है, आप इसको ऐसे ठीक कर लो, तो वो बच्चे तो मान जा, लेकिन जो उन पुस्तका ने बेचे हैं उनकी मजबूरी होगी शोर मचाने का, वो फिर शोर मचाते हैं, बच्चों को भी भड़काते हैं, कहते हो तो झूठा है, सब ने ऐसा ही लिखा है, ये तो झूठ बोलता है, हैं? तो वो शोर मचाते हैं, कौन उस सत्य को स्वीकार नहीं करते जो उन नकली उस अज्ञान रूप पुस्तक को बेच करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इस दास के साथ जो क्रोथा कांड हुआ ये इसी यही कारण था, इस दास ने इन अज्ञानी ऋषियों के वो ज्ञान की खाल तार दी, और जो इन इसे मोटे मोटे वेदों को और इस सत्यार प्रकाश को दुनिया में बेच रहे हैं, इस सत्यार प्रकाश को दुनिया में बेच रहे हैं, और इस सत्यार प्रकाश के वेदों का भी अनुवाद इन्होंने बहुत जगह कति गलत कर रखा है। तो इस दास ने यही कहा था कि ये सत्यार प्रकाश तय कभी किसी को पढ़ान योग्य भी नहीं है, इसमें सारी गलत सोच गलत थ्योरी स्वेद विरुद्ध ज्ञान भर रखा है। अब जो इसने बेचकर रोटी खा रहे थे और प्रभु पाक रहे थे कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े आचार्य हैं, और हमने वेदों और गीता को पढ़ा है, हम सत्यार प्रकाश को खूब अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, तो उनको मुश्किल माचगी कि तुम्हारे अनुयायी जो इन सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं तुम्हारे को धिक्कारेंगे और तुम्हारी ये प्रभुता खत्म हो जाएगी, ये प्रधान पद जाएंगे। इसलिए उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया, दुष्प्रचार शुरू कर दिया, रामपाल गुंडा है, वो चोर है, ठग है, ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उन प्यारी आत्माओं को जो भगवान के निकट आना चाहते थे उनको परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, इतने पाप के भागी हो गए। लेकिन ये सच्चाई रुक नहीं सकती, या तो ऊपर आवेगी। ठीक है, हमारे ऊपर दुष्प्रचार करके हमारे को इन्होंने हमारे ऊपर कीचड़ डाल दिया, हम अपने कीचड़ को धोवांगे और सफाई जैसे लाल के ऊपर गोबर घेर दे एक बार तो बुरा लगता, उसको साफ करके दिखा देंगे, भाई ये गोबर नहीं लाल है, देखो जो कहते हुए इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये जनता फिर पहचानेगी, धिक्कारेगी उन नालायक ने जिन्होंने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया और करवाया, राजा और प्रजा को भड़का करके। लेकिन ये परमात्मा का मार्ग, इसको कोई रोक नहीं सकता, पृथ्वी पर उस मालिक के वचन से चला है ये। अब दिखाता हूं आपको इस नकली में ऋषि दयानंद की के परमात्मा पाप नाश नहीं करता, और यजुर्वेद में स्वयं अनुवाद कर रहा है और 6 बार लिखा है भगवान की वाणी की महिमा में। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म बोल रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है। अब देखिएगा यही यजुर्वेद अनुवाद करता यही महर्षि दयानंद, और 8वें अध्याय का और 12वां श्लोक ये देखिएगा 8वां अध्याय 241 पे पृष्ठ, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 242 पे इसका अनुवाद किया है। ये है 13वां मंत्र 8वें अध्याय का, इसमें लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, पितर कर्तस्य एनस्य एवजनम असी, आत्म कर्तस्य। ये तो देवनागरी लिपि, इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से पढ़ सकते हैं। ये थोड़े एक दूसरे मुड़ जा रहे खेनो के नो तो पढ़े सका, जो भी ये नीचे ऊपर ला रहा खेन। अब यहां अनुवाद इन्होंने खुद किया हुआ है, देखिएगा। अब 242 पृष्ठ पे कहा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, ये देखो क्या कहा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां चक्कर के पड़ गया, इसने सारी चतुरता अपनाई अपनी अज्ञान सोच को, इस दानंद ने अपनी अज्ञान छुरी को छुपाने के लिए जो 70 प्रकाश में ने पहले लिख दी और वेदों का अनुवाद किया बाद में, तो इसने हर संभव प्रयत्न किया कि किसी की बुद्धि में बड़े नहीं या बात कि परमात्मा पाप काट दी। यहां लिख दिया है सबके उपकार करने वाले मित्र आप, तो पढ़ने वाले ने सोचा ये तो कोई मित्र मात्र के बारे में जिक्र करा क्या, चल अगला आगे पढ़ते हैं। अब मित्र का अर्थ परमात्मा सीधा क्यों ने लिख दिया है सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, क्योंकि 70 प्रकाश के प्रथम समुल्लास में भगवान के नामों का वर्णन करते हुए स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, ये देखिए 70 प्रकाश, वही 70 प्रकाश, और इस प्रथम समुल्लास में इन्होंने लिखा कि मित्र का अर्थ परमात्मा ही जाने। ये देखिएगा, ये है प्रथम समुल्लास है और 18 पृष्ठ पे ये 70 प्रकाश। यहां लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो इस मित्र के स्थान पर अब क्या था कि ये हमारा जो ज्ञान का वाद विवाद सन 2003 से, क्योंकि सन 2003 में ये हमारा प्रोग्राम ये यथार्थ ज्ञान एक आस्था चैनल पर प्रारंभ हुआ था, और उस समय ये ज्ञान दास उस पर दिखाने लगा तो इनके कलजे धड़कन लग गए सारे संतों के, इन्होंने उस आस्था वालों के पीछे पड़के हमारा प्रोग्राम बंद करवा दिया। फिर हमने क्या किया कि 2004 में गांव-गांव नगर नगर में जाकर के हमारे भक्तों ने सत्संग शुरू कर दिए, तो उसी दौरान हम सत्संग करते हुए हिसार किया, हिसार से कैथल किया, करनाल किया, कुरुक्षेत्र किया, अम्बाला किया, फिर हम पहुंचे जमुना नगर, तो वहां ये ही मिल गया कौन से ये जो दयानंद के चेले चपटे, इन्होंने वहां सरदारों को भड़का दिया, आप भी उलटपुट करके वहां हमारे साथ विरोध किया और हमारा सत्संग वहां बीच में बंद करा दिया। तो हम वहां से फिर झगड़ा करने की चेष्टा की, तो हम आगे अपना जान बचा के हमने सोचा कि सास अपने आश्रम में रहकर ही हम परमात्मा के बच्चों तक ये संदेश पहुंचाएंगे। तो हमने समाचार पत्रों में ये लेख लिख लिख के और अपने एड देनी शुरू की। तो ये फिर फंस गए, इन्होंने प्रतिउत्तर एक आधा दिया, बाकी झूठ बोले, झूठा है, कपटी है, रामपाल के जाने संस्कृत को, ये तो झूठ बोलता है। अब आम आदमी का नो भी पक्का बैठ रहा था कि मैं ऋषिदानंद तो कति बड़े बड़े विद्वान थे और रामपाल तो के जाने संस्कृत और वेदों के बारे में, महर्षि के बारे में जो उनके अनुयायी करे वह साची होगी। तो उन्होंने फिर जब मैंने ये फोटो स्टेट लिख करके भेजी समाचार पत्रों में, एज इट इज कॉपी के यो लिख रखा, महर्षि ने तम पढ़ के देख लो, अनुवाद कर रखा, इसमें संस्कृत की जरूरत है कौन। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया था उनके अनुयायियों ने, वो विरोधियों ने, हमारे विरोधियों ने जो असत्य को नहीं स्वीकार करने देना चाह रहे थे समाज को, कहने लगे आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में तो मित्र के बारे में लिखा, परमेश्वर ने लिख रखा। तो पुण्यात्मा इसलिए सत्यार प्रकाश में ये दिखाना पड़ा कि सत्यार प्रकाश के प्रथम मंत्र समलास में स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि मित्र का, जहां मित्र का अर्थ समझो परमेश्वर, अर्थात इसने उसी आधार से अनुवाद करते हुए। और ये भी सोच रही दानंद जी की कि जय मन सीधा यहां परमेश्वर लिख दिया, अगर पाप ताप लिख रहा है, पाप नाश हो जाते तो तुरंत बुद्धि पकड़ जाएगी, तो इसने वहां मित्र लिख दिया। यही कारण रहा कि ये वेदों के पढ़ने वाले, इनकी आंखें भी जो है ना वेदों के ठेकेदार बन रहे थे, इनको पता नहीं वेद में क्या लिख रखा है। यही परमात्मा समझाना चाहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जब जग है सब अंधरे और दिक्कत के तैनण चश्मे, इनका फिरा मोतिया वेंद्रे। इन वेदों ने रोज पढ़ा करते, सत्यार प्रकाश को पढ़ते थे वो इनके अनुयायी, और ये नहीं समझ पाए कि वेद में क्या लिख रखा परमात्मा, तो गौर पाप ने काट दे। अब देखो ये यजुर्वेद आठवें अध्याय का तेरहवां श्लोक है, इसमें लिखा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के एनस्य माने अपराध, एनस्य शब्द साथ पढ़ेंगे, अवैधन माने विनाश करने वाले हो, अपराध माने पाप। ये देखो एनस्य माने पाप के, अवैधन माने दूर करने वाले हो, एनस्य माने अवजन माने दूर नाश करने वाले। तो एनस्य का अर्थ समझो आप, एनस्य माने पाप, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो एक ही बात है, विनाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने पाप के अपराध के, अवजनम विनाश यानी नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो। पितर कर्तस्य पिता के किए हुए एनस्य माने, ये भी अपराध ही समझो, विरोध आचरण नहीं, एनस्य माने अपराध के, अवैध जन्म अच्छे प्रकार हरने वाले असी माने हो। आत्म कर्तस्य अपने किए हुए एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो, एनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म हो घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो, अवजनम हो। विद्वान जानता हुआ मैं जो कुछ भी अन्य अधर्म आचरण किया करता हूं व करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, वह उस सब एनस्य माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, एनस्य माने पाप के, अवैधन माने नाश करने वाले, दूर करने वाले असी माने हो। अब ये हो गया कंसेप्ट क्लियर कि दानंद जी ने वेदों के कैफे का भी पता नहीं था। वेदों में भगवान के गुण हैं, जैसे औषधि की बुक में रोग काटने वाली बीमारी के विषय में विस्तृत वर्णन होता है, और वो वेद तो बता रहे हैं, औषधि तो बता रही है कि ये औषधि मिलाई जाए तो ये रोग कट सकता है, और वो नकली वैद्य कहे कि दवाई से औषधि से रोग नहीं कटे, फिर उस औषधि ने शर्मा मारा जिसकी जिस रोग ना कटे। तो भगवान की स्तुति उपासना ते जब पाप नहीं कटे तो भगवान की भक्ति की स्थिति समाप्त हो जाती है, आवश्यकता ही नष्ट हो जाती है। और यही कारण हो गया कि लोग नास्तिक होने लगे। परमात्मा से दूर चले गए भगवान कुछ नहीं कर सकता, जैसा कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, परमात्मा घोर पाप को भी काट सकता, लेकिन वो है कौन, उसका नाम क्या है, कहां रहता है। अब इस दानंद जी के अब तीन सिद्धांत फेल हो गए। एक तो परमात्मा ब्रह्म एक है अनेक नहीं, स्वयं कहता परब्रह्म से मेल, यानी एक ब्रह्म एक परब्रह्म, दो ब्रह्म हो गए। दूसरा के परमात्मा पाप नहीं काटता, और वेद बताते हैं घोर पाप भी काट दे। और तीसरा वो निराकार बताता है, और स्वयं कहता उपासना से उसका साक्षात्कार हो जाता है। वैसे तो कंडम आप पर कर ली इसने, एक इस्त उठाई रह गए, अगले पृष्ठ पर झूठ पता नहीं इसलिए नहीं मालूम, तो पहले पर तो निराकार कह और दूसरे पर कह रहा है कि वो साक्षात्कार हो जाता है। अपुण आत्माओं, ये क्या था कि ये छोटी सी उम्र में पिछले जन्म का कोई पुण्य संस्कारी था युद्धानंद, और घर छोड़कर 20-22 वर्ष की उम्र में यू पहुंच गया बाहर भगवान ढूंढने खातिर। वो इसे अनाड़ी संत इसने मिल गए जिन्हें कह कह का ना बेरा था, साधु संत को 13 गुरु बनाए और सबसे खींचड़ा ज्ञान इकट्ठा करके रोड़ा वो कंकर पत्थर करके गोबर इकट्ठा और सत्यार प्रकाश की रचना कर दी और वो ठोक दिया अड़ंगा सारा उसमें। और ये फिर जब भगवान मिला नहीं, परमात्मा की चाह थी, घर जान जो घर आया को ना भांग पीण लग गया वो टाइम पास करने के लिए, यह बनैन की खातिर। ये जितने संत घर तक निकल जाए हैं ये बाबा जी को वहां है, वहां फिर इनकी बिरान माटी हो ना घर के रहते ना घाट के, भगवान मिलता को ना तो कोई भांग पीण लग जाएगा, कोई चरस के सोटे मार के अपना पड़ा रहे वहां पर है। और निदान दक्षिणा इनकी बात गप्पा तीन मिल ले जा है, ये इनके सुलपे सलपे पीण जोगा इनका गुजारा चल ही जाता, तो जीवन बर्बाद कर जाते। ये दानंद जी भांग पिया करता था, तमाखू सूंघा करता था, तमाखू खाया करता था, अब्रक बसम भी खाता था। इनके जीवनी में लिखा, दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और मेरा ये बताने का उद्देश्य इसलिए है कि जब तक आप आंखें नहीं देख लोगे कि जिस वस्तु को आप लिए फिर रहे हो, जैसे आपने घी का पात्र ले रखा उस पर लिख रहा है शुद्ध देसी घी, और उसको खोल के देखा नहीं, दास ने भी वो ले रखा है जिस कंपनी का तुम ले रहे हो, उसको खोल के देख लिया उसमें गोबर पाया। और दास ये दिखाना चाहता है, देख खोल के देख लो तुम्हारे इस कनस्तर में घी लिखा लेवल घी का, इसमें गोबर है। अब खोल के देखने की दिक्कत से भाई ना है तो घी है तो खाओ अपना ठाट से। अब मैंने यो सत्यार प्रकाश रूपी कनस्तर जिस पर लिख रखा था वेदों अनुसार लिखा है, यो कनस्तर खोल कर दिखा दिया कि वेदों अनुसार नहीं है, ये वेद विरुद्ध व्याख्या से परिपूर्ण है, आप भी देख लो इसने खोल के। अब उनने तो खोल कर देख लिया जो बेचा करते इसने, वो पड़ गए मेरा पीछे है, वो तो गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, कपटी है, क्या जाने, संस्कृत नहीं जानता, फलाना नहीं जानता, हिंदी तो जाना है हमें, ये तो हिंदी में लिख रहा क्या सत्यार प्रकाश, और हिंदी में अनुवाद करा क्या तेरे मैं ऋषि ने। तो पुण्यात्मा यो भांग पिया करता था, दास नहीं कह रहा, इस महर्षि ने अपनी कलम से लिख कर और एक पत्र भेज रखे हैं, उसके आधार पर ये जीवन त्री तरुण मापूर्ण इसके सेवका ने छपवा रखा है। देखिएगा ये एक पुस्तक है, महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अगर दूत, संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से ये छपवाया गया है। देखो यहां ये महर्षि दान, इसमें एक ये चैप्टर है महर्षि दान जीवन व्रत और कर्तृत्व, लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योतिषमती MSc DPhil और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान। महर्षि दयानंद निर्वाण सती निबंध माला प्रथम पुष्प संपादक स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती प्रकाशक डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान विज्ञान परिषद भवन महर्षि ज्ञान मार्ग इलाहाबाद प्रथम संस्करण। अच्छा आगे देखो इसके पृष्ठ नंबर, पहले तो इनका वो दिखाते हैं कि ये क्या प्रश्न नंबर 28 पे इसमें क्या लिखा है जीवन और कर्तृत्व में प्रथम लेख में अपने द्वारा स्वामी दानंद जी ने स्वयं पत्र लिखकर भेजा था। मैं स्वामी दानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। जन्म चरित्र संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ के मजोकटा देश मौरवी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहां अपना पिता और निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीते हो तो मेरे पास आवे तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में शर्म करना यानी परिश्रम करना, धन आदि व्यय करना नहीं चाहता। अब देखो पुण्यात्माओं, ये तो ढोल पीटे हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हैं माता पिता का जो है ना वो करो। और स्वामी जी कहता है कि मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूं। क्या कहते हैं, यदि मेरे माता पिता जी जिंदे, हम अपने यथार्थ गांव अपने पिता का नाम और गांव और ठिकाना इसलिए सही नहीं बता रहा हूं, कहीं मेरे माता पिता जीवित हों और वो पता लगा के मेरे पास आ जाएं और उनके आने के बाद मुझे उनकी सेवा करनी पड़े, उनके साथ घूमूं या उनके खान पीन पर खर्च करना पड़े। मैं नहीं चाहता उनके लिए दो पैसे खर्च करना, उनके लिए समय निकालना उनकी सेवा में। अरे तेरा गजब भैयो। और कहते हैं मेरा सुधार के काम में बाधा पड़ गया, ये सुधार की रांद काट गया, उसका पता हमने सत्यार प्रकाश में जैन का सुधार कार्यक्रम दिखा दूं है तो उंगली दबाओ आप। कहता 24 साल की लड़की 48 साल के पुरुष का ब्याह करना चाहिए, 24 वर्ष की स्त्री 48 वर्ष के पुरुष से ब्याह करो, ये उत्तम विवाह समय है। ये इसे इसे सुधार के रोग काट रखे, ऐसे लेख लिख रखी और इतनी बूंडी बातें लिख रखी है, मन शर्म आओ आपके सामने सुनाते और पढ़ाते हुए इस सुधार के विषय में। अब पुण्यात्माओं, जैसे एक मजदूर है, मजदूरी करके अपना काम चला रहा है, उसका तो वही ड्यूटी है, कर्तव्य है, और वो नोक है कि मैं अपने माता पिता पर पैसे नहीं लगाना चाहता, ना इनकी सेवा करना चाहता, मेरी मजदूरी के काम में बाधा पड़े। कोई किसान है, वो किसान खेती करता है, वो उसका वही कर्तव्य है, वही कर्म है, और वो नोक है मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करूं क्योंकि दानंद कहन लाग रहा और क्योंकि मेरे खेती के काम में बाधा पड़े, इनके साथ घूमना पड़े, इनकी सेवा करनी पड़े, दो पैसे लगाने पड़े। अभी न कित कितर हो इस महर्षि ने बताया, कोई थ्योरी, कोई सोच, कोई लिखने की बात थी इसकी। औरों ने तो सलाह दें ये कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बस यही परम कर्तव्य है, और खुद नो कहना मैं तो माता पिता की सेवा करने के हक में नहीं क्योंकि वो आगे तो उनको दो पैसे लाने पड़े हैं और उनके साथ मैंने अपना समय खराब करना पड़े। परमात्मा कबीर जी कहते हैं इसे इसे नकली लोगों के लिए क्या बताते हैं कि करनी तज कथनी कथें, आप करें नहीं और कहें कहें, करनी तज कथनी कथें अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात, पंडित और मसाल चाहिए दोनों सूझे ना, औरों को करें चांद ना रहे, आप अंधेरे में और अंत बात बनाओ और आप कुति उल्टा काम करें। तो ये महर्षि दानंद की, यह तो आपने सुन ली समाज सुधारक की। आगे देखो यू भांग पिया करता इसी पुस्तक के 21 पृष्ठ पे, ये देखिएगा, ये वही है ज्योतिषमती लेखिका और जीवन वर्त कर्तृत्व पृष्ठ 21 पे आइए हम इसको, क्योंकि यहां इन्होंने मिसप्रिंट हो गया है, ये 1913 है, 1313 नहीं है, 1313 स्वामी जी का जन्म भी नहीं था। अब यहां से देखेंगे ये 20 पृष्ठ से, यहां लिखा है कि पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था जब संवत 1912 विक्रमी समाप्त हुआ। 1913 अगले 5 मास में कानपुर प्रयाग आदि मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध सदान मैंने देखे, या 1913 है ये। तो अब फिर 21 पर आइए, स्वामी जी क्या बता रहे हैं कि तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। और आसोद सुदी दो संवत 1913 है, 1313 गलत प्रिंट हो रहा है, को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। यहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्भय करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में, अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया, और सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। जय हो महर्षि दानंद नसैडी की, रहतरा गजब हो। नौका चावल तक खाने छोड़ दिए, दूध दूध पी कर नौका दिन रात में योग साधना में, देख कितनी झूठ कपोड़ पे ले, और नौका भांग पीने लग गया, भांग पी के बेसुध हो जाया करता। अब भांग पी के और बैठ गया नो आसन पदम लगा के कितला के कड़बी द्वार के, तो सारी रात बैठा रहा, उसने पता नहीं तो कि पड़ा है कि बैठा है। लोग ने सोचो वे कमाल कर रहा महात्मा, सांझ का बैठा और सुबह तक ओ हो सारी रात भजन किया इसने, तो ना मेरा भांग में पड़ा है यो। अब देखो पुण्यात्माओं ये क्या कहते हैं कि महर्षि जी ने ना वो तो पहले पिया करता था, बाद में छोड़ दी थी। अरे तो साधना काल में पी रहा था, साधना करते करते कुबाड़ कर रहा था। ठीक है, जब तक इंसान भक्ति मार्ग पर नहीं लग्या है पहले गलती होगी, वो त्याग दे और फिर साधना करे, क्योंकि मैं भांग पीऊं, तमाखू खावे तमाखू सूंघे, अब्रक बसम खावे अब्रक बसम, और संत की क्या को खाने की आवश्यकता क्यों कर पड़गी। आयुर्वेद में अभ्रंग बसम तो बहुत ही भयंकर है, ब्रह्मचारी ने तो निकट भी नहीं जाना चाहिए, अभ्रंग बसम इतनी भयंकर बताई, नकमी बताई, अरे वो अभ्रंग बसम भी खा था। तो पुण्यात्मा ये इसके कर्तव्य नो दिखाने जरूरी हो गए कि इस तरह मन हट जाएगा आपका, जिसको आप महर्षि और बड़े समाज सुधारक बड़े अच्छे करेक्टर का यानी विकार रहित मान रहे थे, यो तो सारे अवगुणों से फुल्लोपता कति फुल्लभ था। यदि इसने फिर भांग पीना छोड़ दिया हो हम यह भी मान लिया, तो ये अब वेदों में क्या लिख रहा है, वेद बता रहे हैं कि परमात्मा पाप काट देता है, और सत्या प्रकाश में ठोक रखा भगवान पाप नाश कर नहीं सकता। वेदों में लिख रखा परमात्मा स शरीर है, वो मनुष्य सदृश है, और खुद अनुवाद कर रहा सत्या प्रकाश में उल्टा डंगा भर रखा, तो इस ये भांग के नशे में ही अनुवाद उलट पुलट कर प्राग है और ये सारा लिख गया, नहीं तो ये आंख खोल के लिख सके था वेदों में ऐसा लिखा। अब आपको छह प्रमाण दिखाऊंगा, भगवान स शरीर है मनुष्य सदृश है, इन्हीं इसके द्वारा ही बहुत इसके द्वारा भी इसका अनुवाद है। अब सबसे पहले निराकार साकार की थ्योरी को वेदों में दिखाते हैं कि ये क्या कहता है कि वेदों में ऋग्वेद प्रारंभ किया इसने सबसे पहले, फिर ऋग्वेद इसका सूत में आया नहीं, एक मंडल को करके फिर बंद कर दिया, फिर यजुर्वेद को कर दिया पूरा, फिर इसकी मृत्यु होगी। तो ढाई जो शेष जो बते थे ढाई वेद वो किसी अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया हुआ है, और उस उन्होंने इसी महर्षि दानंद के द्वारा दी गई गाइडलाइन उसी के सुझाव से उन्होंने अनुवाद किया। महर्षि दानंद जी ने अपने सत्यार प्रकाश में लिखा है कि परमात्मा के नाम में देखो अग्नि माने आग तो आम आदमी बता देगा, इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा का अग्नि शब्द जहां वेदों में है उसका नाम परमेश्वर समझे, अग्नि माने परमेश्वर समझे। अब देखिए सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है जो इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, और ये वो सत्यार प्रकाश है, और ये कहां से छपा है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ कोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके प्रथम समोल्लास में स्वामी जी बता रहे हैं, ये देखो बिल्कुल स्टार्ट में क्या बताया है कि जैसे आकार से विराट अग्नि और विश्व आदि उकार के से हरण्य गर्भ वायु जैसे मकार से ईश्वर आदित्य आदि प्रज्ञादि नामों का वाचक ग्राहक है। ये यहाँ देखो ओम जो एक ओंकार शब्द है वह परमेश्वर के सर्वोत्तम नाम है। परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है ओम, क्योंकि इसमें अ उ और मैं तो इसमें अक्षर है, वे मिलके ओम समुदाय हुआ है। इससे परमेश्वर के बहुत से नाम आते हैं। परमेश्वर के नाम आते हैं, अग्नि भी है। आगे देखो इसमें अब 15 पृष्ठ पे प्रथम समुल्लास में यहां लिखा है कि सौ प्रकाश होने से अग्नि ये परमात्मा के नाम है, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है, और स्वरूप सब प्रकाश रूप होने से अग्नि। अच्छा आगे देखो अब 17 पृष्ठ पे लिखा है अग अणि इण गतर्थक धातु से इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज जानने प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। यानी अग्नि से परमेश्वर समझना चाहिए, अग्नि माने परमेश्वर। अब इन्होंने ऋग्वेद का अनुवाद प्रारंभ किया। ऋग्वेद में प्रथम मंत्र में अब देखिएगा, ऋग्वेद प्रथम मंडल में ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है, और ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिसभा 3/5 मैरी सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और सम्राट प्रिंटर्स मुद्रक है सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इन्होंने ऋग्वेद के जो प्रारंभ किया प्रथम मंडल प्रथम सूक्त में, ये अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। ये मंत्र पहला ही मंत्र प्रथम मंडल का पहला ही सूक्त पहला ही मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ हुआ। तो इसमें अनुवाद किया है इन्होंने, यहां अग्नि शब्द का अर्थ करना ही छोड़ दिया। यहां अग्नि माने परमेश्वर होता है। या फिर देखेंगे यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने प्रमाण है। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक सद्ब्रह्म के ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। यानी अग्नि से अकारत ब्रह्म यानी परमात्मा है। इत्यादि सद्मत ब्राह्मण प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। इस प्रमाण से अग्नि शब्द प्रजा शब्द से प्रजा और प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो सदा सत्य यथावत पालन करता है वही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले सर्वज प्रकाश करने हारे विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अब देखना निरूपकार यासक मुनि जी ने भी ईश्वर और भौतिक पक्षों को अग्नि शब्द की भिन्न भिन्न व्याख्या करके सिद्ध किया है, जो संस्कृत में यथावत देख लेना चाहिए। मनुजी ने इन दो श्लोकों में भी परमेश्वर के अग्नि आदि नाम प्रसिद्ध हैं। परमेश्वर के अग्नि माने परमेश्वर। अब स्वयं भी स्वामी जी ने ये प्रथम मंत्र में तो अग्नि माने परमेश्वर किया है, दूसरे में भी इस प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में भी अग्नि शब्द है, दूसरे में भी अग्नि है, अग्नि माने परमेश्वर, और तीसरे में अग्नि माने अच्छी प्रकार ईश्वर यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे में अग्नि माने हे परमेश्वर, और पांचवें में अग्नि शब्द नहीं है, छठे में अग्नि माने परमेश्वर, फिर सातवें में अग्नि माने परमेश्वर, और फिर आठवें में नहीं है, नौवें में अग्नि माने परमेश्वर ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्मा फिर देखो इसी स्वामी जी ने अनुवाद किया है, मंडल नंबर एक सूक्त नंबर 96 के अंदर 9 श्लोक है इसी प्रकार जो पहले सूक्त में है। अब 96 सूक्त में भी 9 मंत्र है, 9 में थे 8 अग्नि शब्द, 8 में परमेश्वर स्वयं लिखा है। यहां देखिएगा, ये है सूक्त नंबर एक मंत्र मंडल एक सूक्त 96 ऋग्वेद, और इसके प्रथम मंत्र में अग्नि में परमेश्वर व भौतिक अग्नि दोनों कर रखी। परमेश्वर कह दो भौतिक अग्नि को परमेश्वर। अच्छा, फिर 2 में अग्नि माने परमेश्वर को, और फिर 3 में अग्नि माने परमेश्वर जगदीश्वर को, फिर 4 में अग्नि माने जगदीश्वर, और फिर 5 में अग्नि माने ईश्वर को, और फिर अग्नि माने परमेश्वर को, 6 में ये 6 गया, इस 6 में अग्नि माने परमेश्वर को और अग्नि माने जगदीश्वर को, ये 7वां। अब 9वां, 8वें में अग्नि शब्द नहीं है, 9वां अग्नि माने परमेश्वर। अब पुण्य आत्माओं, अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में, अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट लिखा है कि अग्नि तनुरसी परमात्मा परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, रसी माने है। यहां देखिए गायकोर, इन्हीं के द्वारा स्वामी जी के द्वारा दिए गए सुजेशन के आधार पर एक इन्हीं के आचार्य ने श्याम वेद का अनुवाद किया है। ये देखिएगा श्याम वेद, ये यजुर्वेद और श्याम वेद इकट्ठा ही जल्द किया है। यजुर्वेद तो स्वामी दयानंद जी द्वारा ही अनुवादित है, और श्याम वेद किया है इस वेद भिक्षु जी ने। यहां देखिएगा कहां से छपा है, ओम प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना। कहां से छपा, दान संस्थान नई दिल्ली प्रकाशन उपार संस्करण, प्रकाशक है पंडिता राकेश राणी, अध्यक्ष दान संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। अब इसके अंदर देखिएगा ये श्याम वेद जहां से प्रारंभ होता है, ये देखिएगा श्याम वेद प्रारंभ होता है ये प्रथम अध्याय। अच्छा, प्रथम मंत्र में अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि परमेश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, ढेर सारे अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। जहां देखो आगे, जहां भी देखो इतने लिखे हैं इसमें, आगे फिर अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर को,